अगर हम एक हल्का सा खुलासा कर लें, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हमने पूरी आयत तो पढ़ ली, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें उसमें रह गई जिनको पिन पॉइंट करते हुए आपके सामने रखूँगी। पहली चीज़ तो लिबास ही के मौजू को अब पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस कर लूँ आपके साथ, ताकि कोई भी शुबा आपके जहन में ना रह जाए। तो पहली बात यह है कि लिबास जो है इंसान की जिस्मानी यानी इंसान के जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को छुपाने के लिए भी है और ख़ूबसूरती के लिए भी है। काबिल शर्म हिस्से कौन से होते हैं? हर वो चीज़ जो शहवत को उभारे, क्योंकि जब से दुनिया में तरक्की ज़्यादा हुई, कुछ बड़े ऐसे लोगों ने कि जो अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं, उन्होंने सतर को सिर्फ शर्मगाह तक ही महदूद कर दिया और चंद इंच कपड़ा भी जिस्म पे ना लगाकर समझा कि बस हमने छुपाने वाले हिस्से छुपा लिए। तो आपके मेरे समझने के लिए सबसे आसान बात क्या है कि जब वो चीज़ जिसके साथ इंसान की शहवत उभरती है उसको छुपा लेना चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि लिबास खूबसूरत हो सकता है, ये तकवा के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन खूबसूरत लिबास बनाना और पहनना ज़िंदगी का मकसद नहीं बन जाना चाहिए। फिर अगली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम से भी ये चीज़ साबित है, सहाबा किराम से भी, कि जब अपने दोस्त अहबाब साथियों को मिलने के लिए जाते तो अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन करते। ये एक इज़्ज़त होती है। कभी भी आप कहीं जाते हुए अच्छा कपड़ा पहने या आपके घर में कोई अच्छा कपड़ा पहने, तो उस वक्त नीयत से किया करें कि मैं अपने मेहमान या अपने मेज़बान की इज़्ज़त कर रही हूँ। बस आप किसी के घर जाएं, उसने आपको दावत पे बुलाया, सारा दिन वो काम कर रहा है, घर साफ़ कर रहा है, और आप उठ के गंदे मंदे कपड़ों में और बाल बिखरे हुए चले जाएं, क्या महसूस होगा उसको? आपके घर कोई ऐसा आ जाए तो आपको फ़ौरन लगेगा इसको मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई। तो ये सोच के किया करें, ये ना सोचा करें कि मेरी इज़्ज़त होगी या बहुत मेरा बड़ापन है। शोहरत और रिहाकारी का लिबास नहीं पहनना चाहिए। लिबास कीमती भी हो सकता है, हैसियत के मुताबिक है। कोई किसी के लिए आप लाइन नहीं बांध सकते कि 100 करोन ज़्यादा हैं या 1000 करोन ज़्यादा हैं। हर बंदे का अपना तकवा होता है, अपना लेवल है, हर एक को अपनी हैसियत का खूब पता होता है। पहली बात यह कि किसी को अच्छे लिबास में देख कर बदगुमान नहीं होना चाहिए। बस दफ़ा किसी का अच्छा लिबास पहनना तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ होता है, लेकिन हम उसके बारे में बुरी बात सोच कर गुनाहगार हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे फिर जब उसका तذکرہ कहीं और करते हैं कि ये तो हमेशा नए कपड़े पहनती हैं, इनका तो काम ही एक है कपड़े पहनना, उनको पहनने दें, दुआ दें। नबी सल्लम ने अच्छे लिबास को किसी का देखकर भी मोहब्बत को बढ़ाने के तरीके सिखाए कि जब किसी को नया लिबास पहनना देखो तो दुआ दो, इल्बिस जदीदन इश हमीदन व मुत शहीदन। तीन लफ्ज़ हैं, और मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए तीन सुनहरी असूल हैं। किसी को क्या दुआ देंगे? इल्बिस जदीदन, तुम और कपड़े पहनो नए। इश हमीदन, और तारीफ़ वाली ज़िंदगी बसर करो, यानी तुम्हारी तारीफ़ें भी हों। व मुत शहीदन, और तुम्हें मौत शहादत की आए। कितने लोगों ने लोगों को नए कपड़े पहनते देख कर ये दुआ कभी दी? इल्ला माशाल्लाह, तो कहाँ से भी मोहब्बत आए। हम तो और ही ज़्यादा भमें चढ़ाने लगते हैं और नखरे करते हैं कि अच्छा जी ये अब देखें आज फिर नया जोड़ा पहने। नहीं, मोहब्बत दुआ दीजिए, अगला भी दुआ देगा आपको। इसी तरह एक और दुआ भी है कि युखलिफुल्लाहु ताला, यानी उसका दो ये हिस्न मुस्लिम में है दोनों दुआएं, आप फिक्र ना करें। युखलिफुल्लाहु ताला से पहले एक और लफ्ज़ आता है कि जिसका भी खुलासा यही है कि तुम नए कपड़े पहनते रहो और तुम्हें अल्लाह इसका बेहतरीन बदल दे। किसी को भी देखो नया कपड़ा पहनना हुआ तो ख़ामोशी से मैं ये दुआ अक्सर दे देती हूँ, और मौका मिले तो उसको कह के भी देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ इंसान के मोहब्बत बढ़ाती है दूसरे से। तुबली व युखलिफुल्लाहु ताला, तुम इसे पुराना करो। देखिए कितनी प्यारी दुआ है, यानी तुम्हें इतनी लंबी उम्र मिले कि ये जो कपड़ा आज नया पहना है इसको पुराना भी करो, यानी कि ये कपड़ा यहीं रहे और तुम चले जाओ। व युखलिफुल्लाहु ताला, और इसके बाद तुम्हें अल्लाह और भी दे। क्या बता रही है ये बात कि कपड़े अच्छे पहने देख के लोगों के लिए बदगुमान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसी दुआ देंगे जिसकी वजह से अगले के दिल में भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मोहब्बत होगी। फिर इसके बाद यह है कि दीन के साथ ख़ास तौर पे अच्छे कपड़े का ताल्लुक़ इन आयात में जब हमने देखा, अल्लाह ताला ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, तो इससे भी चंद चीज़ें समझ आती हैं कि ख़ास तौर पर जब नमाज के लिए या दीन के किसी काम के लिए निकलें तो ज़्यादा इख्तमाम के साथ। इख्तमाम से मुराद रियाकारी या ये नहीं है कि इतने चमकीले और भड़कीले पहन लें, गोटे किनारी वाले कपड़े स्पेशली के लोग फिर उसी को देखते रहें, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उस मौके की मुनासिबत से पहने, जो अच्छा भी हो सकता है, सोबर भी हो सकता है, मौका अच्छा हो तो खूबसूरत भी हो सकता है, किसी के घर शादी के मौके में दर्स में जा रहे हैं तो फैंसी कपड़े पहन के भी दर्स दे सकते हैं और ले सकते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के पास ऐसा आता है कि एक चादर थी इमाम अबू हनीफ़ा के पास, तो कहते हैं कि वो 400 अशरफियों की मतलब उसकी मालियत थी। फिर इसी तरह आप देखिए इमाम मालिक के बारे में आता है कि वो हमेशा जब हदीस का इल्म देने के लिए आते तो बेहतरीन लिबास पहनते, तो लोगों ने जब पूछा तो कहने लगे कि मैं इस साहिब हदीस की इज़्ज़त के लिए ऐसा करता हूँ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए। और बाज़ दफ़ा आता है कि जो लिबास वो पहनते वो दोबारा कभी उनको नहीं देखा गया, पहनते और उसके बाद उसको अपने स्टूडेंट्स को या जिसको भी चाहते सदक़े में दे देते। इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक मौके पर किसी ने बहुत अच्छे कपड़ों में देखा तो थोड़ा सा तनकीद का रंग रखा कि बड़े अच्छे जी कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में ये कहने की कैसे जरूरत हुई, मैंने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 दिरहम वाली चादर पहने भी देखा है, मैंने तो अल्लाह के नबी को एक से एक खूबसूरत कपड़ा पहने हुए भी देखा है। तो मतलब ये कि ये चीज़ हदों में रहे, ना इसराफ बने, ना तबज़ीर हो, ना दिखावा हो, ज़िबाइश कर लें, आराइश कर लें, लेकिन नुमाइश की नीयत से ये सारा काम ना करें। फिर इसी तरह एक खातून के बारे में आता है कि वो जब रात को तहज्जुद के लिए उठती पहले गुसल करती और फिर अपनी शादी पे पहना हुआ जोड़ा पहनती, यानी जो भी उनके लिए एक बड़ा ख़ास जोड़ा था, तो फिर वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती। किसी ने उनसे कहा कि ये क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेहतरीन लिबास पहन के अल्लाह ताला के सामने जाती हूँ, क्योंकि हुज़ू ज़ीनतुकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, और मस्जिद का हमने एक मानी नमाज भी किया था सजदे की जगह या सजदा। तो लिहाजा जिस चीज़ को आप अहम समझते हैं उसी चीज़ के लिए आपके अंदर दिल में केयर भी होती है और कदर भी होती है। फिर उसके बाद ये कि कपड़ों में हया का रंग गालिब रहना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए कि जो जिस्म को ज़्यादा ही और ख़ूबसूरत करके दिखाएं। बस दफ़ा हुसन होता है तो उसको ज़्यादा नुमाया करके, जैसे डीप नेक गले या हाफ़ स्लीव्स हैं या इस तरह की शलवारें घुटनों तक पहनने, ये चीज़ें मुरव्वत के भी ख़िलाफ़ हैं और इससे फिर माशरे के अंदर रुझान बदलता है। दूसरी एक और चीज़ आपको ज़रूर जहन में रखनी चाहिए अपनी लिबास के ज़रिए में कि इस्लाम क्या चाहता है, कि मुसलमान से मगलूबियत का रंग ना झलके। जो लिबास होता है ना वो हमारा अंदर का अक्कास होता है, हम जो लिबास पहनते हैं ना इससे लोगों को फौरन पता चल जाता है कि हम क्या हैं। अगर हम वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े या कुछ अदाकारों और गुलकारों के कपड़े या मॉडल्स के कपड़े पहनेंगे तो हम फौरन जहन में आ जाएगा लोगों के कि ये हम उनसे मगलूब हैं। जो भी पहने एक लम्हे के लिए देखें, ख़ुद को आईने में देखें, क्या ये सिबगत अल्लाह का रंग दिखता है, इस्लाम का रंग है इसमें? इस्लाम किसी शलवार कमीज़ मैक्सी ट्राउज़र इसकी बात नहीं करता, कल्चर की बात ही नहीं है। लिबास लिबास का ताल्लुक बस साफ़ ना हो और शफाफ ना हो, ये दो लफ्ज़ हैं हदीस में, बस साफ़ टू टाइट, वसफ़ बयान करने वाला, स्ट्रेची। आजकल की टाइट्स को इस पे परख के देख लीजिए, आज कल की जो बिल्कुल स्ट्रेची शर्ट्स हैं कि जो रुकू में जाते हुए भी लड़कियाँ पीछे से खींच खींच के ही रख रही होती हैं, क्योंकि जब वो झुकती हैं तो वो ऊपर चढ़ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। टाइट शर्ट्स वाली कमीज़ें जिसको आप प्लेट्स वाली शर्ट्स कह सकते हैं उसमें देख लें, टाइट फिटिंग वाली। और बस तो इतने ज़ालम दर्जी होते हैं कि एक एक हिस्से का नाप ले रहे होते हैं और लड़कियां बड़े शौक से उनके सामने जाके खुल जाती हैं कि ले लें हर हिस्से का नाप ताकि हमें देखें। कोशिश करें कि बराह रास्त दर्जियों से कपड़े ना सिलवाएँ, किसी से भी सिलवा रही हैं ना, अगर सिलवा रहे किसी को भेज के सिलवा लें, खुद ना सामने जाएँ। यानी दर्जी को पता हो कि ये आपका ड्रेस है, आप सोच सकते हैं कि वो आपको किस एंगल से देखेगा। हया के ख़िलाफ़ है ये चीज़ें, जितनी आपके अंदर तकवा होगा उतनी होगी। ढीला ढाला पहने अच्छा लगेगा आपको, आप बहुत टाइट करके अपने आप को क्यों एक बोतल बना के फेर रहे हैं? क्या आप अपने आप को एक एक चीज़ को दिखाना चाहते हैं? खूबसूरत लिबास से आप ढीला ढाला रखें, आप देखें आप रिलैक्स होंगे, आपके अंदर आजजी आएगी, आप उठेंगे बैठेंगे बड़े सुकून से बैठेंगे। लेकिन अगर आपका लिबास इतना टाइट हो कि आपका सांस भी ना आए, नमाज नमाज ना पढ़ी जाए, बाज़ कपड़े ऐसे, मैं तो एक छोटा सा मियार रखती हूँ लिबास के बारे में आमतौर पर अपने जहन में कि क्या इस लिबास में मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। बस कहीं भी जाएं, शादी का लिबास है, कहीं दावत में जा रहे हैं, घर में इस लिबास में नमाज़ पढ़ लूँगी अगर मौका हुआ तो इंशाल्लाह वो अच्छा ही होगा। और अगर बाज़ दफ़ा सिर्फ इसलिए नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती कि ये लिबास उस काबिल ही नहीं कि इसमें नमाज़ पढ़ी जाए, तो फिर समझ लें कि अगर मौत आ जाए या कुछ ऐसा हाल हो तो क्या हम अपनी नमाज़ छोड़ देंगे और उस लिबास की वजह से ख़राब होंगे। फिर उसके बाद यह है कि इस्लाम जो लिबास के ज़रिए औरयानी को ख़त्म करना चाहता है, नुमाइश को ख़त्म करना चाहता है। एक और चीज़ यह है कि मर्दों की औरतों से और औरतों की मर्दों से मुमासलत को ख़त्म करना चाहता है। इसको हर बंदा जानता है, ये अलग बात है जो जानना नहीं चाहते वो समझना नहीं चाहते, वो कहते हैं नहीं जी ये पैंट्स तो औरतें भी पहनती हैं मर्द भी पहनते हैं। मैंने तो आज तक किसी मर्द को फ़्रॉक पहने नहीं देखा है, इतने मॉडर्न दौर में भी कभी मैंने किसी मर्द को मैक्सी पहने नहीं देखा, स्कर्ट पहने नहीं देखा, कैसा लगेगा? आप एकदम के लिए सोचिए, तो बहुत अच्छी तरह सबको पता है कि क्या कपड़ा पहन के कोई दूर से आ रहा हो तो वो औरत लगता है कि मर्द, और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि दूर से आते यकीन करें पता ही नहीं चलता कि आने वाली औरत है कि मर्द है। तो ऐसी चीज़ों से जितना अंदर तकवा बढ़ेगा ये चीज़ें खुद बहुत आपकी ठीक होंगी, और अगर नहीं ठीक हुई ना तो भी अंदर गड़बड़ है। फिर इसी तरह इस्लाम जो लिबास के ज़रिए हमें इसराफ से बचाना चाहता है, और एक और चीज़ इस्लाम का मैसेज समझ लें कि मकसद हयात नहीं बनाता चाहता लिबास को। जिसने इसको ये समझ लिया कि ये एक मकसद है वो ख़त्म हुआ। बाकी रहेगी बात एक छोटा सा ज़ेहन में जो आपके सवाल यकीनन उभर रहा होगा, और वो क्या है कि क्या घर में औरत पहन सकती है शौहर की खुशी के लिए? बाज़ दफ़ा शौहर बीवी अकेले रहते हैं, बच्चे अभी नहीं हैं या छोटे हैं या जैसे हैं, पहन सकती है जो चाहे पहन सकती है। घर के अंदर रहते हुए जब उसके पास कोई गैर महरम नहीं, औरत मर्द की खुशी के लिए वेस्टर्न क्लॉथ पहन सकती है, उसके लिए जो भी पहनना चाहे पहन सकती है। लेकिन यह है कि कई लिबास ऐसे होते कि ऐसी चीज़ें जिसका फिर हमारी दूसरी चीज़ों पर असर आता है ना। अब ऐसा लिबास है जिसके हर वक्त शहवत का माहौल है, नमाज़ नहीं पढ़ी गई या नमाज का वक्त छोड़ दिया, ये हर बंदा फिर खुद जानता है। शरण कोई कबाहत नहीं है, आप मैक्सी पहने, आप नाइटी पहने, आप कुछ भी पहने, ठीक है। अगर आप जाहिर है कि बिल्कुल इतना अपने आप को नीम नेकेड करके या जिसको कह सकते हैं नीम बरहना करके फिरेंगी तो फिर हो सकता है कि आप फिर जिक्र ना कर सकें, क्योंकि रहमत के फरिश्ते आपके पास आते हुए ज़रा झिझकेंगे, हो सकता है आपकी नमाज़ छूट जाए। लेकिन एज अ लिबास वक्ती तौर पे, हर वक्त तो हर बात का मूड थोड़ी होता है, हर वक्त खाना थोड़ी कोई खा सकता है, तो अगर आप किसी वक्ती जज्बे के तहत खुशी के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए घर में काम कर रहे हैं, आप ढीला ढाला लिबास पहन रहे हैं, स्लीवलेस को शर्ट है पहन लेते हैं, इंशाल्लाह इससे कोई आपके तकवा पे फ़र्क नहीं आता। बल्कि बाहर जब इतना फितना होता है तो वो मर्द जिनकी निगाहें फिर पाक रहती हैं और रहनी चाहिए, फिर उनकी बीवियों को बल्कि ज़्यादा अच्छा उनके लिए तैयार होना चाहिए, ताकि उनको एहसास हो कि हम बाहर नहीं देखेंगे तो वही चीज़ हमारे पास घर में मौजूद होगी। फिर उसके बाद ये है कि लिबास के नापते से एक और चीज़ जो पीछे जिक्र हो गई थी कि शोहरत की नीयत से लिबास नहीं पहनना चाहिए, और फिर उसके बाद एक और चीज़ ज़हन में रखें कि मेरे अंदर का हाल किसी को नहीं पता, ये मेरे लिबास से पता चलेगा, यानी मेरी शख्सियत खुल जाएगी लोगों पे। लिबास आरामदेह भी होना चाहिए, ये नहीं कि अकड़े हुए कपड़े पहन रहे हैं, कलफ लगे हुए और ख़ारिश हो रही है और चुभ रहे हैं और परेशान हैं, अंदर से धागे चुभ रहे हैं, कढ़ाई चुभ रही है और पहन रहे हैं। रिलैक्स पहने, बिल्कुल लाइट लाइट रहें, आप देखेंगे उतना आपके अंदर आजजी आएगी, उतना आपके लिए नेकी करना आसान हो जाएगा। हदीस में आता है कि अलबजाजा तुम्हें नल ईमान, के आजजी और हाकसारी यानी जिसको कहते हैं सादगी, ये ईमान का हिस्सा है। फिर ये जो बात हुई थी ना इसमें लिबास व तकवा, तो ये कौन सा है? इसके कई मुख्तलिफ मुफसरीन ने इसकी तफसीर की, एक कहते हैं वो लिबास जो मुत्तकीन क़यामत के दिन पहनेंगे, दूसरी इसकी तफसीर है कि ईमान का लिबास, तीसरी अमल सालेह का लिबास, चौथी इसकी तफसीर की कि खशियत इलाही यानी अल्लाह का खौफ भी एक लिबास होता है, ऐसा लिबास जिसे पहनकर इंसान तकब्बुर करने की बजाय अल्लाह से डरे और ईमान और अमल सवाले के तकाज़ों का अहतमाम करे। फिर इसी तरह लिबास व तकवा की एक तफसीर की गई कि जिस तरह ज़ाहरी लिबास पर तवज्जो दी जाती है, इसी तरह अपने अंदर को गीबत बुगस कीना हसद वगैरह जैसे नापाक जज्बों से पाक रखा जाए। फिर इसी तरह ये नमाज के पर्दे में ये चीज़ आती है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि सर से पांव तक औरत का जिस्म नमाज में छुपना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिबास जो होते हैं वो उस सतर की हद के नहीं आते और खेचातानी लगी होती है, एक चीज़ करते हैं फिर दूसरी चीज़ करने लगते हैं, तो ख़ास तौर पर औरत के नमाज की। बाज़ लोगों ने मर्द के लिए भी एक ख़ास कपड़ा महसूस किया जिसमें टोपी को एक ख़ास हिस्सा बना दिया, और बस लोग मैं सोचती हूँ क्यों उन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं जो सिर्फ इख्तलाफी हैं। मैंने देखा है कि बस लोग सीधी बहुत अच्छी बात कर रहे होते हैं, एकदम कोई ऐसी फ़िक्ही बात आ जाती है ना जो हमारे मुसलमानों में इस वक्त फ़िक बनी हुई है, तो उसको पूरी बात को रोक के पहले उस पर बात करते हैं, टोपी के बगैर नमाज नहीं होती, टोपी के बगैर नबी की नमाज नहीं पढ़ी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ जिस तरह ये कहना चाहिए कि चपकलश होती है ना दो में, सास बहू में कोई बात हो ना तो वो ज़रूर वो नुक्ता ढूंढेंगी जिस पे अगले को चिड़चिड़ानी है, तीली लगाने वाला अंदाज में तो समझती हूँ इसको, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम से कई ऐसी चीज़ें मौजूद है, इस वक्त हमारा ये मौजू नहीं है नमाज का, लेकिन इशारतन आपको ये बात बता रही हूँ कि औरत के लिए तो सर से पाँव तक है हाथ और उसका चेहरा खुला होना चाहिए नमाज में, लेकिन मर्द के लिए ये है कि उसकी पिंडलियों, पिंडली समझे के जैसे घुटने होते हैं ना, घुटनों से लेके नाफ तक का कवर जो है वो कपड़ा जो है वो कवर हो, और शोल्डर भी कवर होने चाहिए। लेकिन मर्द के लिए बहरहाल औरत के और मर्द के नमाज में यही फ़र्क है उसके लिबास का और उसके हुलिये का। तो चलते हैं आगे, और कई चीज़ें फिर साथ साथ जो आएंगी अगर आगे जहन में तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अब आगे हम देखेंगे आयत नंबर 35 से। फरमाया या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुसूना अलैकुम आयाती फमन इत्तका वअस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए औलाद आदम, अगर आएँ तुम्हारे पास रसूल तुम में से जो बयान करें तुम पर मेरी आयात, तो जिसने तकवा इख्तियार किया और अपनी इस्लाह कर ली तो नहीं है कोई खौफ उन पर और न वो गमज़दा होंगे। अब देख रहे हैं कि बार बार इस रुकू में या बनी आदम का तस्करा, ऐसे लगता है कि बड़े प्यार से अल्लाह ताला ईमान वालों को आदम अलैहिस्सलाम की नस्बत से पुकारते हैं, और पीछे आदम और हव्वा का किस्सा बयान करके शैतान का जो एक प्लान था उसको खोल दिया। तो बड़े प्यार से कहा कि देखो तुम्हारे पास रसूल आ गए थे ना, रसूल कौन थे जो अल्लाह की मर्ज़ी बताने आए, अल्लाह का तरीका बताने आए, अल्लाह ताला को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, किस चीज़ से अल्लाह ताला राज़ी होता है किससे नाराज़ होता है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जब बता दी नबियों के ज़रिए, तो अब क्या करना है तुमने। फमन इत्तका, बस जो कोई तकवा इख्तियार करे यानी मान जाए, जिन बातों से रोका उससे रुक जाए, जिस चीज़ को कहा करो वो कर ले, तो ऐसे लोगों का हाल क्या होगा। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई उन पर खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। ऐसे लोग जिन्होंने रसूलों की बताई हुई बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो वो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि इस दुनिया में बेखौफ होंगे बल्कि आगे जाकर भी बेखौफ होंगे। इससे पता चलता है कि क़यामत के दिन ईमान वाले खौफ व खुजन से बिल्कुल पाक होंगे, वो घबराहट और वो परेशानी उनको बिल्कुल लाहक नहीं होगी जो कि दूसरे लोगों को होगी। और कितनी बड़ी नेमत है कि कोई मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पुरसकून रहे, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए इंसान के ऊपर, लेकिन इंसान बिल्कुल अपने आप को इतना कूल एंड काम रखे, इतना अच्छा रखे कि जिसके बाद वो अपनी जगह से हिले भी ना। और ये चीज़ मांगनी चाहिए, इसी को हिल्म कहते हैं, इसी को तहम्मुल कहते हैं। और ऐसे लोग अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं, हमें कितने अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, हाँ तो अल्लाह को क्यों ना अच्छे लगेंगे। तो इसलिए अल्लाह सुबहाना तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि देखो तुम अगर बेखौफ और बेगम होना चाहते हो, तो रसूलों के ज़रिए से जो दीन तुम तक पहुँचा, जो बातें तुम्हें बताई गईं, उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दो। व असलहा फला खौफ़ुन अलैहिम, साथ इस्लाह की बात करके और यकीन दिला दिया कि जितनी इस्लाह करोगे, जितना अपने आप को इन चीज़ों के साथ जोड़ते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी के मामलात पे नज़र डालोगे, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए इन सारी चीज़ों को आसान कर देगा। वला हुम यहज़नून, और ना वो कोई गमज़दा होंगे, किसी बात का फिर गम नहीं होगा। लोगों ने अच्छा कहा, लोगों ने बुरा कहा, उनको इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने रब को राज़ी कर लिया। और जो अल्लाह की रज़ा पर चल जाते हैं उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान और ख़ुशी आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मान के नहीं देते, जिनका हाल क्या है कि उनको जितना कह दे, जितना बता दिया जाए, उतना नहीं मानते। और ऐसे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों में रहते हैं, तो इनका हाल क्या होगा। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और बेशक जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, यानी मुसलमान तो बने लेकिन इस्लाम उनकी ज़िंदगी में ना आ सका। बातें कहते कराते बहुत थे, सुनते सुनाते बहुत थे, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते थे। वस्तकबरू अन्हा, और उससे तकब्बुर किया। आयतों से किब्र क्या होता है, ना मानना। बतरल हक की वगिमतिन नास, जो बात कही गई उसको माना नहीं, जो चीज़ उनको बताई गई कि ये कर लो ये ना करो, इससे ना रुके ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसके ऊपर कोई गौर व फिक्र करने की कोशिश की। उलाइका साबुन नारी हम फीहा खालिदून, यही लोग हैं आग में रहने वाले और वो उसमें हमेशा रहेंगे। देखिए कितना बुरा अंजाम है ऐसे लोगों का कि जो बात को सुनकर ना माने, जो इन सारी बातों को सुनने के बाद कहें कि ठीक है ये सारी बातें लेकिन मैं नहीं कर सकती, भाई मैं तो बहुत बड़े अफसर की बेगम हूँ, मैं तो ख़ानदानी फुला हूँ, और हमारा ख़ानदान ऐसा है और वैसा है। पिछली आयतों के साथ लगा के देखें, दो चीज़ें हमने पिछली आयतों में देखी, एक लिबास के अंदर एतदाल पे रहना और एक खाने पीने पे, और खाने पीने पे हमने इधर इतनी बात नहीं की। लेकिन यहाँ देखिए मुसरफ़ीन, इसराफ़ करने वाले कैसे अल्लाह ताला का खाते हैं और अल्लाह ताला ही की बात को नहीं मानते। असल जो चीज़ मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को बंदे से निकालनी है ना, वो सरकशी के रवैये को निकालनी है। चाहे खाएं, चाहे पिएं, कुछ भी करें, लेकिन इसराफ़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अल्लाह ताला की आयतों को सुने और मानने वाला जहन बना लें। ये नहीं कहा कि बस तुम सुनते जाओ और इसको वजीफ़े बना लो और इनको बस तुम एक मंत्र की तरह पढ़ते रहो, बल्कि अमल करो ज़िंदगी के अंदर। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसको वहाँ ले आओ। लेकिन कुछ लोग सारा कुछ सुनने के बावजूद भी करते क्या हैं, जब घर में कोई मौका आता है तो फिर वो कहते हैं अब ये कैसे हो सकता है कि दूल्हा है और उसको आप सोने की घड़ी ना पहनाएं, दूल्हा है और उसका जोड़ा रॉ सिल्क का ना बने, क्या सारे कपड़े ख़त्म हो गए दुनिया में? अब देखिए ये तकब्बुर है ना कि हम कहते हैं दूल्हा को ससुराल से जोड़ा जाएगा तो वो सिल्क का जाएगा, घड़ी जाएगी तो सोने की जाएगी और अंगूठी ना पहने बस दे देंगे। ये क्या है? क्या ये किबर क्या और तकब्बुर नहीं है? आज हमारी खुशियाँ पूरी नहीं होती क्योंकि जो भी लिबास की बात होती है फ़ौरन हम औरतों पर आ जाते हैं और मर्दों के लिए जो चीज़ें मना है उसको जिक्र ही नहीं करते। हालांकि अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए भी कुछ चीज़ों को खोल के बयान कर दिया जिसमें एक रेशम है, सोना। ये दोनों चीज़ें आपने फरमाया औरतों पर हलाल है, मर्दों पर हराम है, लेकिन इसके बावजूद बताइए कि हमारी खुशियाँ इन दो चीज़ों के बगैर कम ही पूरी होती हैं। इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इस्लाम इन चीज़ों को नहीं पसंद करता कि आप देखा देखिए ऐसा करें। फिर कहते अब क्या करें, दूल्हा के तो जोड़े ही नहीं मिलते आजकल दूसरे, तो मत पहनाइए, शादी फिर भी हो जाएगी। ख़ासतौर पे इस वक्त जो दूल्हा के कपड़ों का ट्रेंड आता जा रहा है कि बिल्कुल अब दुल्हन के काम के बराबर ही शायद दूल्हा की भी शेरवानी पर काम होने लगा। कभी आज से 10-15-20 साल पहले मर्दों के कपड़ों पर मुझे अच्छी तरह याद है कढ़ाई की भी अगर कोई बेल लड़का पहन लेता था ना सेम कलर की, तो जो बाप होते थे वो डांटते थे कि अरे ये क्या लड़कियों वाले कपड़े पहन रहे हो, बहन का सूट पहन लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कढ़ाई को ज़रा दूसरे रंगों का किया गया, फिर उसके बाद उसमें मोती लगे, सितारे, और अब तो दबका नख तक लगे मैंने देखे। यानी लड़कों की शेरवानी आप देखें, आम दूल्हा की छोड़े, ईद पर मैंने बच्चों को पहनी हुई देखी और मैं हैरान रह गई कि ये लड़की की और लड़के की है। आप देखिए इससे होगा क्या, कपड़े का फ़र्क पड़ता है? जैसे सीधा साधा जोड़ा मैंने पहन लिया तो मेरी सोच बदली, इसकी जगह मैं एक बहुत भारी भरकम दुपट्टा, एक बड़ा फैंसी लाइट सा लेके बैठूं तो मेरे पढ़ाने में हलल आएगा ना, उससे फ़र्क पड़ता है। अब लड़कों को जब आप इस तरह की चीज़ें होंगे फिर वो चलते भी ज़रा देखिए, ज़रा अठला के चलते हैं। आप लड़कों की चाल आज के दौर में फील करेंगी ना तो बिल्कुल कमर उचकाते हुए चल जाएंगे, क्योंकि अब कपड़ा जो पहना है, फिर उसके बाद उसके साथ मैचिंग चीज़ें आ गई और क्या कुछ हो गया। अल्लाह ताला कहता है ये पसंदीदा चीज़ नहीं, इसको अगर अपनी ज़िंदगी से निकालोगे तो फिर याद रखो कि तुम्हें फिर असल चीज़ मिलेगी जिसको अल्लाह ताला वहाँ देना चाहता है जो तुम यहाँ नहीं लेना चाहते। लेकिन किबर और तकब्बुर आपको दुनिया में हर रंग में देखेगा मुसलमानों में। अब देखिए कि यहाँ चूँकि तकब्बुर की बात हुई है तो हम ज़रा थोड़ा सा एक हल्का सा इस पर भी बात कर लें कि आखिर लोग क्यों उरियाँ होना चाहते हैं, क्यों जिस्म दिखाते हैं, क्यों मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। यानी एक सवाल पैदा होता है ना, जितना हर बंदा इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है कि जितना सुकून ढीले ढाले कवर्ड कपड़ों में आता है उतना फैंसी में नहीं आता। सच है, क्यों घर आते ही सबसे पहले कपड़े बदलते हैं, मियाँ के आने से पहले ख़ास तौर पे, फिर वो जुब्बा पहन लेते हैं जो कई साल पुराना है, हैं, या वही 5 साल पुराना लॉन्ग का सूट पहन लेते हैं, कहते हैं अब सुकून आ गया हैं। इसका मतलब कि आपने अपनी रूह को उसमें उलझाया हुआ था। लेकिन चलें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर एक क्या है, मर्तबे के हसूल के लिए लोग बड़ा बनना चाहते हैं, लोगों का ख्याल क्या है, यानी स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं इसके बारे में। अब इसकी डिटेल्स आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन अमूमन लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, लीड्स में शामिल होने के लिए करते हैं। दूसरी वजह उरियां होने की होती है जिन्सी जज्बात की तस्कीन। इंसान के ऊपर जब शैतनत आ जाती है तो हर वक्त वो लस्ट, सेक्स, रोमांस, लव में रहता है। अब इस तरीके से फिर वो चीज़ें जो बढ़ाई जाती हैं, आप देख लें साइन बोर्ड्स को देख लें, अब एक ऐसी गंदी रिपोर्ट किसी जगह शाया हुई थी कि फ़लाँ मुल्क में अब हिप्स की नुमाइश पे मिस वर्ल्ड को चुना जाएगा। यानी पहले तो मिस वर्ल्ड चुनी जाती हैं, हर एक पता नहीं उनके जिस्म का क्या कहेंगे देखते हैं। एक ख़ास मुल्क का ऐड था कि अब वहाँ का जो हुस्न का मुकाबला होगा वो सिर्फ औरतों के हिप्स पे होगा और कहीं ब्रेस्ट पे होता है। दुनिया में कैसी गंदी मिसालें मौजूद हैं, ये क्या है, जिनसी जज्बात की तस्कीन। और ऐसे मर्दों को फिर अपनी बीवियों में, घरों में कोई फ़ायदा नहीं दिखता। और नतीजा क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि औरत बिल्कुल ऐसे बन जाती है कि जैसे एक खिलौना बन चुकी। क्या आज ये नहीं हो गया, आप अपने मुल्कों के किसी साइन बोर्ड को अगर जाते आते देख लें, एक खातून थी उन्होंने बताया कि यानी किसी जगह गाड़ी में ड्राइवर के साथ, अपने यंग ड्राइवर के साथ जा रही थी और कहते हैं एक ऐसा मोड़ आता है वहाँ शहर में कि मुड़े तो आगे ही बिल्कुल इतनी बड़ी खूबसूरत और यानी इंतहाई जिसको कहते हैं अट्रैक्टिव तस्वीर है, तो जब मुड़े तो ना चाहते हुए भी औरतों को भी नज़र पड़ती है, तो ड्राइवर की पेड़ी होगी, तो गाड़ी लगा दी उसने, एक्सीडेंट हो गया, बाद में पता चला कि उसकी नज़र उस पर चली गई थी। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जो मर्द जॉब के लिए निकले सीधे साधे काम करने वाले, जब चारों तरफ आप उनको ये बेहयाई के काम दिखाएंगे तो क्या फिर उसके बाद वो गलत काम नहीं करेंगे? पाकिस्तान में इस वक्त जो साइन बोर्ड्स बनते हैं एक स्लाइड चलने के 3 लाख रुपए लेते हैं, जो शायद चंद सेकंड तक चलती है, यानी इस वक्त ये पूरी मेरे पास एक रिपोर्ट थी, उसी में से कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से उसके अंदर औरत को नंगा करके पेश कर दिया। चले अब वहाँ मुझे तो नहीं पता कि इस वक्त क्या हालात है, लेकिन चेहरे की नुमाइश तो हो गई, बाजू तो खुले मैंने देखे, पिंडलियों तक तो टांगे खुलती थी। अब अल्लाह रहम करे अगले दौर में अगर आज अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो नंगी तस्वीरें देखते हैं अगर वो भी देखने लग जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, मीडिया में तो आपको अब ऐसी झलकियाँ दिखने ही लग गई। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसी को सिर्फ उनके जज्बात को भारने के लिए और मतलब पैसा कमाने के लिए भी लोग रियानी करते हैं, बस मॉडलिंग करवाई ही सिर्फ इसलिए जाती है कि जब ऐसी तस्वीर आ जाती है साइन बोर्ड पर तो उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो बहुत बिकता है। फिर इसी तरह एक और बहुत बड़ी वजह जो माशरे के अंदर बेहयाई और रियानी की है ये वो मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल जिन्होंने अपने जिस्म को ही पेशा बना लिया और वो लोगों को दिखा के इस तरह के कपड़े पहन पहन के, इसमें ख़ास तौर पे जिस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है अल्लाह करे ये बात कहीं पहुंच जाए ऐसे लोगों तक कि जो आम कपड़ों के इश्तहार, लॉन के सूट देखें, दुकानों पे पोस्टर्स लगे होंगे, फिल्मों के ऐड देखिए, क्या हम मुसलमानों को इसका बायकॉट नहीं करना चाहिए? चले अपने मुल्क को छोड़ें जहाँ आप बैठे, यहाँ हम कौन सा खूबसूरत नमूना दिखाते हैं लोगों को? आप बाहर जाके देखें सड़कों के किनारे आपको कितनी ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जो मुसलमानों की दुकानों के बाहर लगी हैं और मुसलमान स्पॉन्सर्स करने वाले और उन्हीं के बुलाने और उन्हीं के आने वाले लोग हैं। ये सारी चीज़ें शैतान की चीज़ें। फिर इसी तरह आप देखिए कि कैट वॉक का नाम आपने सुना होगा कि कैसे मॉडल जो हैं वो चाल चल चल के दिखाती हैं, जिसकी वजह से फिर आम औरतें किसको चलती हुई अच्छी लगेंगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि आज के दौर में फेसबुक का एक जो शोशा चला हुआ है, अच्छा काम करवा ले तो बहुत अच्छा काम है। कल मैं किसी के साथ बैठी हुई थी ऐसी, तो कोई बात हुई, मैंने कहा आपको पता है वीकेंड पे कोर्स शुरू हो रहा है, करी जी मैंने फेसबुक पे देखा था ना, मैंने कहा अच्छा वो उसमें डाल दिए किसी ने, मैंने कहा मुझे दिखाइए ना, मैंने इस तरह अभी कभी खुल के देखा नहीं, तो वो दिखाने लगी, मैंने कह रही, तो मैंने उसको पूछा कि आपको ये मिला आपने देखा? करी हाँ। मैंने कहा आगे आपने क्या किया? करी कुछ नहीं। मैंने कहा ये तरीका नहीं कि इसको आप आगे आप फ्रेंड्स को करें? करी हाँ मैं देखती हूँ। मेरे बैठे बैठे उसने 5-10 मिनट लगाए और पूरा उसने अपनी वो लिस्ट में शायद 60 कितने लोग थे उनको कर करा के उसने, कह रही मैंने 55 अपनी दोस्तें जो पाकिस्तानी मुस्लिम उनको अभी भेज भी दिया। मैंने कहा आप कहने लगे आज पहली दफ़ा मेरी फेसबुक जो है वो वर्थ इट हुई है। खुद कह रही थी कि आज इसमें तो सिर्फ बेकार और जंक है, लोगों की तस्वीरें, लोगों के गाने, उनकी मूवी, उनकी शेयरिंग। इस्लाम ने मना नहीं किया आप बनाएं फेसबुक, लेकिन उसका अच्छा इस्तेमाल करें ना। मैंने कहा आपको पता इन 55 में से कोई एक भी आ गई और जुड़ गई कुरान से, आपका फ़ायदा हो गया ना, एक क्लिक आपका हुआ, आपने 2-4 लफ्ज़ लिखे, अब जो करेंगी वो भी आगे कर देंगी और जिसने इस पर डाला होगा उनका हिस्सा डल गया ना। हमारे दिमाग इन चीज़ों पे कम चलते हैं और बाकी चीज़ों पे हम बहुत ही ज़्यादा लेके चलने लगते हैं इन चीज़ों को। फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए भी लोग रियानी फैलाते हैं, जब तक कोई अपने बिज़नेस के साथ कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी सेक्रेटरी, कोई ऐसी सेल्स गर्ल ना रखे जो बहुत लोगों को अदा के साथ वेलकम कहे, वो समझते हैं कि हमारे बिज़नेस ही नहीं चल सकते। फिर इसी तरह मीडिया की बातें तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए दिन में 5 बार लोगों को अल्लाह की तरफ पुकार मिले, हैया अलस्सलाह, हैया अलफलाह, और उसके मुकाबले में कुछ लोग शैतानी आवाज़ें दें, किसकी तरफ ये सारी ज़्यादा चीज़ें जाती हैं? आप देख लें कि नमाज़ों से कौन सी चीज़ रोकती है। जिस सोसाइटी में इस किस्म का कल्चर होगा कि जहां आप हर वक्त तकब्बुर और तकजीब के रवैयों पर रहें, तो आप समझ लीजिए कि वहां फिर बच्चों की नज़रें पाक नहीं रह सकती, वहां के मर्दों के दिल पाक नहीं रह सकते, और ज़िंदगी का मकसद इस तरह का हो जाता है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल इस तरह रखते हैं। अल्लाह अकबर, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको इंसान शेयर भी नहीं कर सकता, तो बात यह है कि वो सीने जो अल्लाह की किताबों के लिए नहीं खुलते वो इंसानों के आगे खुलने लगते हैं। अल्लाह ने औरत को अगर जिस्म दिया था, फिगर दिया था, उसकी एक मकसद था, औलाद नस्लों की खुराक थी उसमें, वो तो महरूम रह गई, उनको तो डब्बे के दूध पे डाल दिया और अपने फिगर को सारी दुनिया के अंदर दिखाने लगे। और आज आप देखिए कि शैतान कितना खुश है और इसी का नाम तरक्की रखता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि उलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये आग में जाने वाले लोग हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। फमन असलमु मिम्मन इफ्तरा, पस उससे ज़्यादा सालिम कौन शख्स है, किससे जालिम, जिसने झूठ बांधा, अल्लाह ही कसीबा, जिसने बांधा अल्लाह पर झूठ, औ कज़्ज़ब भी आयाती ही, और उसने झुठलाया उसकी आयतों को, यानी अल्लाह की आयतों को झुठलाया और अल्लाह पर झूठ बांधा, उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, ये वो लोग हैं जिनको हिस्सा मिलेगा किताब में से, यानी इनके हिस्से का जो रिस्क, इनकी उम्र, जो इनकी बातें अल्लाह ने लिखी हैं वो देगा इनको। ये मत सोचें कि अल्लाह ताला इनको नहीं देगा, लेकिन ये याद रखें कि अगर अल्लाह ताला पर इन्होंने झूठ बांधा है, झूठ गढ़ा है, तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला इनसे कभी राज़ी नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान ये सोच के करते हैं ना कि मैं इससे अल्लाह को राज़ी करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला उससे राज़ी नहीं होता। लेकिन इससे ये बात पता चल जाती है कि ऐसे गलत काम करने वालों की पकड़ एकदम क्यों नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह ताला के पास एक वक्त है, अभी पकड़ का वो वक्त नहीं आया। हिस्सा लेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे या अपने फ़न प्लेक्स सारे कर करा के, फिर उसके बाद उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, ये जो लफ्ज़ है ना यनालुहुम, नाला या नीलु नीलन से, चौथे पारे की पहली आयत में हमने किया था, लन तनालुल बिर्रा में यही लफ्ज़ पा लेना, यानी इनको अपना हिस्सा मिलेगा, वक्त पूरा करेंगे। अल्लाह ताला ने जिस तरह लोगों को नेकियों की मोहलत दी होती है, इसी तरह गुनाहों की मोहलत दी होती है। जब ये कर जाएंगे फिर क्या होगा, हत्ता इज़ा जातहुम रुसुलुना, और जब आएंगे इनके पास हमारे भेजे हुए, क्या करेंगे, या तवफ़ाउनहुम, फौत कर देंगे इनको, काम तमाम करेंगे, हसकम जहाँ पाक, ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी, अब करके दिखाओ मन मजमौजियाँ, अब मज़े लेके दिखाओ। फिर पूछा जाएगा, कालू, कहा जाएगा, ऐना मा कुंतुम तदून मिन दूनिल्ला, कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जिनके बारे में तुम्हारे बड़े दावे थे कि इनके बगैर हम जी नहीं सकते, ये तो हमारी किस्मत बनाते हैं, ये तो रिस्क देते हैं, और इनसे ही तो पूछ के ज़िंदगी गुजारनी है, और ये हमारे नफ़े और नुकसान के मालिक हैं। हर दौर में हर तरह का शिर्क हुआ ना, आज के दौर का शिर्क तो शैतान के फहाशी के प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना, कि जब इंसान शैतानी ज़राए से माल को कमाना अपने लिए हलाल समझता और वो कहता है कि हो ही नहीं सकता, आज के दौर में कारोबार हो ही नहीं सकता जब तक आप औरत को सामने सरेआम ला के ना पेश कर दें, या कोई ऐसे ही बातें जो उसने घड़ी हुई थी, या कोई सरीहन शिर्क का भी मर्तकब था, तो कहा जाएगा आज किधर है वो बिरादरी, कहाँ गया मुआशरा, कहाँ गया तुम्हारा ग्रुप, कहाँ गई तुम्हारा क्लब, किधर गए, कालू दल्लू अन्ना, कह रहे पता नहीं किधर गए, खो गए हमसे, दिख नहीं रहे, जैसे अपनी ज़ुबान में हम कहते ना इधर ही रखी थी चीज़, पता नहीं दिख नहीं रही, यानी ये तो पूरी उम्मीद रख के बैठे हुए थे कि जूँ ही हम वहाँ जाएंगे ये हमें नज़र आएंगे, लेकिन जब वहाँ गए तो कहा खो गए, शर्मिंदा भी हो रहे हैं और इसमें अपने आप को खिसियाना भी महसूस कर रहे हैं, कहा अच्छा, व शहीदु अला अनफुसिहिम, और ख़ुद अपने नफ्सों के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। अला का लफ्ज़ शाहिदों के बाद आया तो अगेंस्ट के मानी आए, ये बात पीछे हम बहुत दफ़ा कर चुके, यानी ख़ुद अपने ख़िलाफ़ गवाहियाँ देंगे, क्या अन्नहुम कानु काफिरीन, के वो काफिर थे, काफिर ना शुक्रा, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में सरकशी करने वाला। अब आपको कुफर के कई मानी समझ आ रहे हैं ना, यहाँ कोई कब्र परस्ती की बात नहीं थी पीछे, कोई नायतों के अंदर कोई किसी मंदिर या मज़ार के ऊपर जाने की, खड़े होने की बात नहीं थी। पता क्या चलता है कि जब लोग अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की बजाय मनमाने तरीक़ों को बना लेते हैं ना, तो फिर वो असल में वो भी कुफर के मुर्तकिब होते हैं। और यहाँ तदून का जो लफ्ज़ है ना, तदून अमिन दून इल्ला, तो तदून यहाँ ताबुदून के मानों में है, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते थे, और इबादत के वो तीनों मानी याद रखे जो सूरह फातिहा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इताअत, बंदगी, सबमिशन, हर इबादत जो है वो किसी जगह माथा टेक कर नहीं होती, बल्कि लोगों की बात मानना, शैतान का प्रोग्राम आम कर देना, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ले जाना, ये सारी चीज़ें जो है उसी के अंदर आती हैं। और ऐसे लोग उस दिन फिर बहुत ज़्यादा नामुराद होंगे, बहुत दुखी होंगे, क्या होगा आप ज़रा अगली आयतों को इमेजिनेट करें, और साथ ही दुआ करें कि अल्लाह ना करे कि हम में से कोई जो दुनिया में किसी के बुराई के प्रोग्राम में हिस्सेदार बना हो, या मिल के गुनाह का काम करें और बाद में फिर उसका ये अंजाम हो, क्या قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں سے، ان کے پاس دوزخ میں داخل ہو جاؤ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو غلط کام کر کے دنیا سے گئے، موت آئی، فرشتوں نے جان لی، کہا کوئی ہے جو تمہاری مدد کر لے، تمہارا پیسہ، تمہارا روپیہ، تمہارا فیم، تمہاری شہرت، تمہارے فینس، تمہارے محبت کرنے والے، کوئی بھی نہیں. خیر، موت آ گئی. اب کیا ہوا؟ جب اپنے ہی خلاف گواہی دی کہ ہم کفر پہ تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں داخل کرتے وقت دکھائے گا کہ دیکھو وہ تم سے پہلے ٹرینڈ سیٹ کرنے والے، وہ تم سے پہلے لوگ جن کے نقش قدم پہ تم چلتے تھے، ان کو دیکھ لو. امامن امت ان کی جمع ہے. کیا پتہ چلا کہ کہتے نا کہ پہنچا وہ وہیں پہ خمیر، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. کچھ اس طرح کا مفہوم آتا ہے کہ انسان جو کام دنیا میں کرے گا نا، کل اس کا بالکل حشر وہی ہوگا. اگر مجرمانہ کام تھے تو مجرموں میں جائے گا، اگر جسم فروشوں کے ساتھ دنیا میں تھی تو وہاں بھی جسم فروش عورتیں ملیں گی، اور اسی طرح کے سارے کام کرنے والے جو سب پچھلے اگلے وہاں جمع کر دیے جائیں گے. دیکھیے، جس طرح نیکی کا کام ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتا نا، ایک دوسرے کے ساتھ اور سہارے کے بغیر نہیں ہوتا، ایک کی غلطی بعض دفعہ پورے سسٹم کی غلطی قرار پاتی ہے، اسی طرح گناہ کا کام بھی ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتا. جس طرح نیکی کا کام کرنے سے پہلے ہم پہلے کیے ہوئے لوگوں کے کاموں کو دیکھتے ہیں نا، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، کیسے ہمارے اسلاف نے کام کیا، اللہ کے نبی نے کیسے کام کیا، بالکل اسی طرح ہر فلم بنانے والا اپنے سے پچھلی فلموں کو پڑھتا ہوگا، کیا طریقہ تھا، کیسے فلمیں کامیاب ہوتی ہیں، کیا اس کے پوائنٹس ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. تو یہاں ایسے لگتا ہے کہ جوں ہی ایک نیا بندہ جہنم میں جائے گا تو وہ جس سب کو دیکھ کر وہ غلط کام کر چکا ہوگا نا، وہ سارے جہنم میں وہاں پہلے سے موجود ہوں گے. فاسق دوسرے فاسق کا سہارا بنتا ہے، اسی کی بنیاد پہ محبت اور اخلاص ہوتا ہے. کبھی آپ اخباروں میں خبر پڑھا کریں جب کوئی گلوکار مر جاتا ہے تو پھر اگلے دن اخبار میں سرخی آتی ہے کہ فلم انڈسٹری کے معروف لوگوں نے وہاں شرکت کی. کوئی گلوکار مرتا ہے تو دوسرے گلوکار جاتے ہیں، سیاستدان مرتا ہے تو سیاستدان جاتے ہیں، اسی طرح کوئی عالم دین مرتا ہے تو آپ خبر پڑھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ اچھے اور علماء کرام نے شرکت کی. انسان کی گواہی ہے، آپ جن کے ساتھ دنیا میں، آپ کی موت بھی ان کے ساتھ آئے گی، وہی آپ کے فیونرل کو کریں گے، کن ہاتھوں سے آپ کو کفن پہنائے جائیں گے، ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے. تو جہنم میں جا کے بھی اللہ ان سب کو جمع کر دے گا. قد خلت من قبلکم، خلت میں تا جو ہے نا یہ مؤنث کی ہے، روٹ کی نہیں ہے. امم جو لفظ پیچھا ہے، امتن کی جمع، تو یہ مؤنث ہوتا ہے عربی میں. اگر لفظ صرف خلط آپ کو روٹس میں آ جائے، یہ لفظوں میں آ جائے، تو اس کا روٹ خا لام تا نہیں ہوگا، خا لام واو ہوگا. اور یہ وہی ہے جو پہلے پارے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اذا خلو الی شیاطینہم، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں. ہماری یہ جو خلا ہے نا، خلا جس کو بولتے ہیں، وہ بھی اسی سے، خالی ہونا. بہرحال، من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امتن، جب کبھی داخل ہوگی ایک امت. یہاں پھر دیکھیے دخلت میں تا مؤنث کی ہے آگے امتن کی وجہ سے، کیونکہ وہ مؤنث ہے، داخلام روٹ ہے اس کا. جب داخل ہوگا ایک گروہ، ایک امت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اس کی بہن. یہاں اخت کس کو کہا گیا؟ پچھلے لوگ، یعنی جہنم میں کچھ لوگ پہلے موجود تھے، اب ایک اور کھیپ آ گئی. اب سوچے، مجھے ان آیتوں کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جیل ہے، پہلی بھری ہوئی ہے لوگوں سے، پھر اس کے بعد ایک اور گینگ آتا ہے کوئی لٹیروں کا، چوروں کا، اور جیل کا دروازہ کھول کے ان کو پیچھے سے دھکے مارے جاتے ہیں. اب جو لوگ پہلے اندر گرمی میں اور گھٹن میں تھے، وہ دیکھتے ہیں ہائے یہ پھر 8-10 آگے، تو پہلے لوگ آنے والوں کو کہیں گے لعنت ہو تم پہ، تمہاری وجہ سے دیکھو ہماری گھٹن اور بڑھ رہی ہے. جہاں پہلے بہت سفوکیشن ہو تو آنے والے لوگوں کو دیکھ کر خوشی کی بجائے غم ہوگا نا کہ کیا ہو گیا ادھر، کیونکہ پچھلوں ہی کے نقش قدم پر آئے تھے، اس لیے ان کے آنے کی وجہ سے پہلے والوں کو جہنم کے اندر اور بھی زیادہ گھٹن محسوس ہوگی، اور یہ سارے وہاں ایک دوسرے پہ لانتان کریں گے. حتی عزت دارکو فیہا جمیع، پھر جب کہ سارے وہاں مل جائیں گے. دارکو کا جلو سے نا درکا سے ہے، دال را کا پیچھے پڑھ چکے، ان المنافقی نفے در کے لسفلی من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. چھٹے پارے کی آخری آیتیں تھیں یا پانچویں کی آخری تھی، उसमें आप देख सकते हैं। तदारुक लफ्ज़ उर्दू में इसी से इदराक, उसको इसका इदराक है, एक चीज़ का दूसरी से मिलना, कोशिश से कुछ पा लेने को इदराक कहते हैं, फ़हम से कुछ पा लेना, ये इल्म से अगला दर्जा होता है, नॉलेज होता है ना, उससे आगे फिर इदराक और दरक और इस यानी डेप्थ में जाना है। यहाँ मुराद क्या है कि जैसे कूड़े के ढेर होते हैं ना, उसके ऊपर फिर और कूड़ा डाला जाए और आखिर में आग लगा दी जाए, यानी कागज़ों की ढेरियाँ लगाते जाएँ और आग लगा दें, सब एक दूसरे के ऊपर पड़ के ख़त्म हो जाएंगे। क़ालत उख़राहुम, अब आने वाले बोल रहे हैं, देखिए जो आए पिछलों ने तो उनको कहा तुम पे लानत है, कितना बुरा वेलकम किया, अब जो आए हैं वो कह रहे हैं ली उलाहुम अपने पहलों से, यानी उस जहन्नम में जो पहले से मौजूद थे, रब्बना हा उलायदल्लूना, अल्लाह ये पकड़ इनको, ये मिल गया वो शख्स जिसने मुझे बहकाया था, ये जिसने मेरी मत मारी थी, ये जिसने मेरे दिल में शक का बीज बोया था, यानी उनको देख के फ़ौरन शिकायत लगाएंगे अल्लाह ताला को कि ये पकड़े गए हैं, सारी ज़िंदगी हम ढूंढते रहे ये गए किधर हैं, हमें सीधे रास्ते से बहका कर, लेकिन आज पकड़े गए, अल्लाह पकड़ इनको, अदल्लूना हमें इन्होंने बहकाया, वहाँ तक जाके भी नहीं मानेंगे कि हमें भी अकल अल्लाह ने दी थी। हमेशा शैतान दूसरे को ये सिखाता है कि दूसरे पे अपने गुना का इल्ज़ाम लगा दो, फ़ाती ही मज़ाबन दीफम मिनन्नार, बस दे इनको अजाब का दुगना, आग का दुगना अजाब, शिकायत क्या लगा रहे हैं कि हमें तो छोड़ ना छोड़, इनको इनकी टेम्परेचर को दुगना कर दे, अगर 200 था तो इसको 400 डिग्री पे कर दे ताकि ये खूब जल के कबाब हो जाए। काला कहा जाएगा, अल्लाह ताला ये फरिश्ते फरमाएंगे, लिकुल्ली देफुन तुम सब के लिए दुगना है, वाय वला किल्ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते क्यों दोनों के लिए दुगना है, इसकी वजह पहली बात यह है कि जब इन्होंने गलत काम किया और तुम्हें कहा कि ये करो तो क्या तुम्हें अकल नहीं दी थी, दो जुर्म हो गए तुम्हारे, एक गलत काम करने के और दूसरे अकल ना इस्तेमाल करने के, तुम्हें अल्लाह ने अकल दी इतना प्यारा दिमाग दिया तुमने इस्तेमाल ना किया, एक वजह यह है दुगने की। दूसरी एक और वजह आप इसको यूँ कह लें कि जिस तरह तुम इन पिछलों का सदका जारी हो इनको देख के तुमने किए, तो कोई तुम्हारे पीछे भी आने वाले हैं जो तुम्हें देख के गलत काम कर रहे थे, चेन रिएक्शन है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने नेकी की तरफ दावत दी उसको आने वाले सारे लोगों का अजर मिलेगा, और जिसने बुरी रस्म डाली बुरा तौर तरीका इख्तियार किया उसके बाद जितने लोग उस काम को करेंगे वो सारे उसके अंदर शरीक हो जाएंगे। तो गोया कि हर बंदा फॉलोअर भी होता है और वो भी होता है टू बी फॉलो, कि जिसको लोग फॉलो करें। अब पहले फिर बोलेंगे वकालत उलाहुम, और कहेंगे उनकी पहली उम्मतें, उला मुअन्नस है अव्वल की, क्योंकि फिर यहाँ वो सारी चीज़ें उम्मत के नाते से मुअन्नस में आ रही हैं, पहले उनसे कहेंगे ली उख़राहुम उनके बाद वालों से, उख़रा भी आखिर की मुअन्नस है, तस्निया है, अरबी में गिनती भी मुज़क्कर मुअन्नस होती है, जैसे अव्वल है तो उला, आखिर है तो उख़रा, छुट्टी या लग जाती आगे। क्या कहेंगे पहले वाले, फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन, तुम्हें हम पर कोई फजीलत तो हासिल नहीं थी, मुराद ये कि तुम हमारी बात ना मानते, हम कोई तुम पे गालिब थोड़ी थे, तुम हमारे पीछे आंखें बंद करके चल पड़े। फ़ज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकसिबून, बस चखो अज़ाब उस वजह से कि जो तुम कमाते थे, यानी अब हम पे ना इल्ज़ाम दो, अब ये बिल्कुल ऐसे ही सोचे कि जेल में बैठे हुए कैदी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम थे हमारे सरदार, तुमने मुझे चोरी सिखाई, तुमने मुझे डकैती सिखाई, वो कहेगा आराम से बैठो, कोई तुम बहुत बड़े नहीं थे हमसे, मेरे पास आने से पहले ही तुम ट्रेन हो चुके थे। यानी आप देखें कि जहन्नुम के अंदर भी रस्सा कशी हो रही है। आप अगर इस पूरी सूरत का मिजाज समझेंगे ना, शुरू से लेके अभी तक और आगे भी, तो इस पूरी सूरत के अंदर आपको कश्मकश बहुत दिखेगी शैतान की इंसान के साथ। जैसे अल्लाह ताला ने कहा था ना, तुम में से बास के दुश्मन है, हक और बातिल की कश्मकश, चपकलश खींचातानी, सिराख कहते हैं अरबी में कुश्ती को, यानी बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक कोल्ड वॉर कह लें, एक रस्सा कशी है जो हमें इस पूरे सबक में दिखेगी। और अगर ख़ुलासा कर दें तो बात का यही है कि शैतान चाहता है कि तुम अल्लाह के हुक्मों को छोड़ के जियो, रहमान की पुकार है कि अगर अपने आप को जहन्नुम का कूड़ा करकट बनने से बचाना चाहते हो तो फिर मेरी बात को मान लो। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि सुन के मानने वाला बना दे, ऐसा ना हो कि हम इन बातों को सुन के अमल ना कर सकें। यहाँ पे सबक पूरा होता है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.